नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 33,660 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी। सरकार ने भारतीय कपास निगम लिमिटेड को कपास सीजन 2023-24 के लिए 1,700 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10% आवंटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के शहजादे ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कहा, होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब रात भर चले इसराइली हवाई हमले में मारे गए। और बैडमिंटन में आयुष शेट्टी, तन्वी शर्मा, मालविका बंसोड और अनमोल खरब ऑर्लियंस मास्टर्स के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 33,660 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना, विनिर्माण क्षमता को उजागर करना और देश के विकास को गति देना है। श्री वैष्णव ने बताया कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए।
आज 4 बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहला है भारत में मेक इन इंडिया, उसके लिए 33,660 करोड़ रुपीस के सैंक्शन से आज कैबिनेट में अप्रूव हुई। दूसरा जो 2023-24 का कॉटन सीजन था, उसमें 11,712 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट मिला, उसके रीइंबर्समेंट से रिलेटेड मैटर्स आज अप्रूव हुए। चौथा, बाराबंकी से बहराइच, इसका एक्सेस कंट्रोल्ड 4-लेन हाईवे 6,969 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ। और स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम आज अप्रूव हुई।
मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को भी मंजूरी दी।
आज एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये रन ऑफ द रिवर यानी बिना बांध बनाए एनवायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं उनके रिवर के फ्लो के साथ ही किस तरह से पावर जनरेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और इसमें देश भर में करीब 7,000 साइट्स आइडेंटिफाई हुई है जहां पर रन ऑफ द रिवर 21,000 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है स्मॉल हाइड्रो पावर से।
सरकार ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्यों में वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन को 20% से बढ़ाकर 30% करने का आह्वान किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि ये कदम एलपीजी से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पीएनजी की दिशा में बढ़ने में सहायक होगा। उन्होंने भविष्य में एलपीजी की खपत कम करने, पीएनजी की पहुंच बढ़ाने और वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में 10% की वृद्धि के लिए पात्रता सुनिश्चित करने के विभिन्न सुधारों का आह्वान किया। सरकार ने आश्वासन दिया है कि कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और तेल शोधक संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यावसायिक एलपीजी का अतिरिक्त 10% आवंटन दिया है।
क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है, रिफाइनरीज उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 40%, रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और पेट्रोल पंप्स पर एडिक्वेट स्टॉक्स पेट्रोल और डीजल के अवेलेबल हैं। नेचुरल गैस के संबंध में पीएनजी और सीएनजी फॉर ट्रांसपोर्ट 100% विदाउट एनी कट कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जा रहा है।
पोत पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी भारतीय पोत सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में विभिन्न बंदरगाहों से 25 भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस भेजा गया है।
पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नागरिकों को रिपैट्रिएट किया गया है साइन ऑफ के बाद विभिन्न पोर्ट से या विभिन्न लोकेशन से इन दैट रीजनल एरिया। कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है और पिछले 24 घंटों में करीब 125 टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 450 ईमेल्स रिसीव हुई थी जिसका जवाब दिया गया। एलपीजी कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो डिस्चार्ज जैसा कि ऑयल कंपनीज के शेड्यूल के अनुसार अभी चल रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम एशिया की स्थिति पर संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रवक्ता ने बताया कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों विशेष रूप से छात्रों के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते भूमि मार्ग से ईरान से निकलने की सलाह दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा ने आज कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान की मांग को मंजूरी दे दी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनता को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।
2013-14 में कृषि का बजट था केवल 21,933,50,00,000 रुपया, लेकिन आज जब यह बजट प्रस्तुत किया है तो 1,30,561,38,00,000 रुपये का ये बजट किया गया है। ये बजट में वृद्धि हुई है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय अभूतपूर्व है।
लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2/2026 पारित कर दिया। ये विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रस्तुत किया था। विधेयक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। राज्यसभा में आज 20 राज्यों के 59 सदस्यों को विदाई दी गई। इनमें 9 महिला सदस्य शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में इनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उपसभापति हरिवंश, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने सदन में उनके योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं आता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 25 लाख से ज्यादा अधिकारियों की तैनाती की है। 15 लाख मतदान कर्मी, 8,50,000 सुरक्षा कर्मी और अन्य अधिकारी इनमें शामिल हैं। आयोग के अनुसार आम चुनाव और उपचुनाव के दौरान निगरानी के लिए 832 विधानसभा क्षेत्रों में 1,000 से अधिक केंद्रीय पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आयोग ने 11 जिला अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। ये सभी अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। अधिकारियों को कल दोपहर 3 बजे तक अपना नया कार्यभार संभालने और इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। असम में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नागांव लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद श्री बोरदोलोई ने कल शाम पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंपा। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के युवराज शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह से फोन पर बातचीत की और आगामी ईद के त्यौहार की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर विचार विमर्श किया और हाल के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। दोनों नेताओं ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करना सर्वोपरि प्राथमिकता बनी हुई है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर राजनयिक संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया। ईरान ने पुष्टि की है कि उसके खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की आज इसराइली हमलों में मौत हो गई। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हत्या की निंदा की और शोक व्यक्त किया। इससे पहले इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कर्ट्ज ने दावा किया था कि इसराइली सेना के हमले में खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब मारे गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि देश के प्रमुख साउथ पार्स गैस क्षेत्र से जुड़े ठिकानों पर आज हमला हुआ। यह हमला दक्षिणी बुशहर प्रांत के असलुयेह इलाके में हुआ। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, जहां कतर और ईरान दोनों के संयंत्र चलते हैं।
दुबई से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अल मिनहाद वायुसेना बेस पर आज सुबह फिर से हमला हुआ। इसका उपयोग लंबे समय से संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना, रॉयल एयरफोर्स सहित सहयोगी बलों और एक छोटी ऑस्ट्रेलियाई टुकड़ी द्वारा किया जाता रहा है। ईरान की ओर से दागा गया एक प्रक्षेपास्त्र आज तड़के वायुसेना बेस के ठीक बाहर एक सड़क पर गिरा। इससे वहां आग लग गई और क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई संचालित आवासीय ब्लॉक तथा एक चिकित्सा सुविधा केंद्र को मामूली नुकसान पहुंचा। संघर्ष बढ़ने के बाद से वायुसेना बेस पर ईरान का ये दूसरा हमला है। इससे पहले शुरुआती दिनों में भी एक ड्रोन हमला हुआ था। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
झारखंड के खूंटी जिले में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर हबील मुंडा उर्फ प्रफुल्ल मुंडा ने हथियार और गोला बारूद के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हबील पर 1,00,000 रुपए का इनाम था और उसने झारखंड सरकार की नई दिशा नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंद, नवरोज और साजिबू चेरी ओबा की पूर्व संध्या पर आज देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कामना व्यक्त की कि ये त्यौहार प्रेम और सद्भाव के माध्यम से भारत के विभिन्न समुदायों में एकता को बढ़ावा देंगे और नागरिकों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएंगे। और अब खेल खबरें। फ्रांस में खेले जा रहे ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आयुष शेट्टी, अनमोल खरब, मालविका बंसोड, ईशारानी बरुआ और तन्वी शर्मा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में आयुष शेट्टी ने किरण जॉर्ज को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत को डेनमार्क के मैग्नस जोहानेसन से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में अनमोल खरब, मालविका बंसोड, ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 33,660 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी। सरकार ने भारतीय कपास निगम लिमिटेड को कपास सीजन 2023-24 के लिए 1,700 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10% आवंटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के शहजादे ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर फोन पर बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।